यशोमति नन्दनं व्रजवरनं
गोरेगांव के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम आराध्य गुरु महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय। हरे कृष्णा। सो केटला गुजराती छे आमा, केटला मराठी छे, तो क्लास केम हिंदी में छे? ओके, तो बधा ने मारा जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, एंड सो हैप्पी टू सी यू ऑल। तो आज का हमारा विषय काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी विशेष है, क्योंकि रथ यात्रा इज़ वेरी सून अप्रोचिंग। तो सब हम एक मूड में है, जगन्नाथ जी की कथा सुनने के मूड में, जगन्नाथ जी के बारे में और जानने की उत्सुकता। ऑफ कोर्स ये कोविड ने काफ़ी जो है हमारा आनंद, हमारा मज़ा किरकिरा कर दिया है, लेकिन हम कोई ना कोई वे निकाल ही लेते हैं। वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल रथ यात्रा, वर्चुअल फेस्टिवल एंड जूम। ओनली थिंग इज वर्चुअल प्रसादम मैच नहीं करता, बाकी सब तो हमारा चल रहा है। तो आज का जो विषय है, मुझे कहा गया था कि रथ यात्रा के बारे में कुछ बताइए, तो मैं सोच रही थी आज हम चर्चा करेंगे रथ यात्रा क्या है, रथ यात्रा हम क्यों मनाते हैं, रथ यात्रा सबसे पहले विश्व में सबसे पहले रथ यात्रा कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी, और इस्कॉन में रथ यात्रा कब शुरू हुई, और श्रील प्रभुपाद का रथ यात्रा के साथ विशेष क्या संबंध है, और रथ यात्रा के में योगदान देने वाले विशेष भक्तों की कहानी, और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में कैसे योगदान देते थे जब वे पुरी में थे, और हमारा इंटरनल मूड, आंतरिक भाव क्या होना चाहिए जब हम रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करें, और रथ यात्रा में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या उसके लाभ है, आध्यात्मिक लाभ क्या है, और हमें क्या मंत्र उच्चारण करने चाहिए जब हम भगवान को रथ के सामने देखते हैं, ये सारे विषय हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कितनी देर में कैसे कंप्लीट करेंगे पता नहीं है, मैं शुरू तो कर रही हूँ, क्लॉक एकदम मेरे सामने है, मुझे ज़्यादा बोलने की बहुत बुरी आदत है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो है क्लॉक रखती हूँ हमेशा, घड़ी को देखते हुए कि समय के अंतर्गत बात करने की कोशिश मैं करूँगी। तो सबसे पहली रथ यात्रा विश्व की कहाँ हुई, कब, कैसे हुई, उस पे अगर हमें समझना है तो हमें जाना पड़ेगा 5000 साल पहले, फ्लैशबैक, हमें जाना पड़ेगा वृंदावन, तभी हम समझ पाएंगे कि ये रथ यात्रा क्यों हुई, कैसे शुरू हुई। तो अगर हम वृंदावन, ऑफ कोर्स हम सशरीर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मन से हम वृंदावन चलते हैं, हम पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन में अब हम आ गए हैं केसी घाट, और यहाँ पे हो रहा है केसी राक्षस का वध। तो ये पूरी कहानी, ये जो पूरी रथ यात्रा की कहानी है, बस अब यहाँ से शुरू होती है। अब केसी राक्षस का वध कर रहे हैं भगवान, वध करने के बाद जो है वहाँ पे नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि जो है वे आके भगवान से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, और कितने दिन आप वृंदावन में रहेंगे, आपको और बहुत सारी लीला करनी है, तो अब ये जो गोपियों के साथ रास रचाना, ये माखन चोरी करना, ये गायों को चरने के लिए ले जाना, ये सारी लीला अब यहाँ समाप्त करिए और चलिए मथुरा, बहुत सारा काम पड़ा है। क्योंकि भगवान जब यहाँ आते हैं इस भू प्रपंच में तो वे बहुत सारे काम, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, भक्तों को साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं, दुष्टों को पनिश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो नारद मुनि कहते बस आप चलिए, तो ठाकुर जी कहते बस तुम चलो मैं आया। और जैसे ही नारद मुनि घूम जाते हैं, ठाकुर जी को मधुमंगल श्रीदाम सुदाम बुलाते हैं और जैसे वे कहते हैं कान हाँ, बस ठाकुर जी सब भूल गए नारद मुनि से क्या बात हुई। फिर से गायों के साथ खेलना, फिर से बछड़ों के साथ, गोप बालकों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इस बार फिर से अक्रूर जी आते हैं कृष्ण को याद कराने के लिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। सी भगवान के लिए व्रजवासी जो है वो बहुत विशेष है, भगवान व्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। व्रजवासियों को जितना सुख भगवान को देखने में मिलता है उससे कई ज्यादा सुख भगवान को व्रजवासियों को देखने में मिलता है। वे ब्रजवासियों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ब्रजवासी भी उन्हें बहुत सरल भाव से, भोलेपन से अपना मानते हुए प्रेम करते हैं। वे भगवान को भगवान नहीं मानते, वे भगवान को अपना पुत्र, अपना भाई, अपना सखा, अपना प्रियतम मानते हैं और ठाकुर जी को ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब ठाकुर जी उन गायों को, उन बछड़ों को, उन गोप बालकों को देखते हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। और इस बार फिर अक्रूर जी आते हैं और वे काफ़ी कठोरता से ठाकुर जी से कहते हैं बस अब बस करिए, आपके माता पिता जो है मथुरा में रो रहे हैं, कारागार में है, उनके सामने उनके 6 बच्चों का वध हुआ है और आपकी इंतज़ार में है, उन्होंने बहुत त्याग किया है, अब आप आइए कम से कम वध करिए और आपके दूसरे भक्तों की जो वहाँ मथुरा में आपके इंतज़ार में है उनकी रक्षा करिए। तो इस बार जो है भगवान कृष्ण अक्रूर से कहते चलो मैं चला तुम्हारे साथ। तो अक्रूर के साथ जो है वे रथ पे बैठ जाते हैं और मथुरा के लिए निकलते हैं। और हम ये कथा जानते हैं कैसे गोपियाँ रो रही है और राधा रानी रो रही है और यशोदा मैया रो रही है और नंद बाबा और उनके सखा सब काफ़ी व्याकुल है कि कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण सबसे वादा करते हैं कि मैं आ जाऊँगा, 2 दिन की बात है। यशोदा मैया से भी कहते हैं इतना क्यों रो रही हो मैया, कितना दूर है मथुरा, थोड़ी ऊंची आवाज में बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा भाग के, और 2 दिन की बात है, मैं वहां काम लिपटा के आ जाऊंगा। तो ऐसे सबसे वादे करते हैं और उसी गोप बालकों के भीड़ में एक गोप सखा भगवान के पास भाग के आता है। वो कहता है कि कान्हा मैंने आपके लिए खीर बनाई है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि ठीक है तुम खाओ, मुझे तो मथुरा जाना है। कहते नहीं, जब तुम शाम को लौट के आओगे तो साथ में खाएंगे। कृष्ण कहते शायद शाम को ना लौट के आ सकूं, मुझे 2 दिन और लगेंगे। सखा कहते कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद खा लेंगे। कहते नहीं 2 दिन नहीं, शायद 10 दिन लग जाए। कोई नहीं 10 दिन के बाद खाएंगे, शायद थोड़ी और देर लग जाए। कोई बात नहीं, आप जब आओगे तब खाएंगे। और इतना जो वो कृष्ण से प्रेम करता था कि अभी भी 5000 साल के बाद भी वो कृष्ण का इंतजार कर रहा है। अभी भी हम जब गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन के पीछे एक जगह है पुछारी का लोटा, वहाँ पे एक लोटा बाबा का छोटा सा मंदिर है। तो कहा जाता है कि वो कृष्ण का व्रजवासी सखा है, उसका नाम पड़ गया लोटा बाबा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कृष्ण लौटेंगे, कृष्ण लौटेंगे, कृष्ण जरूर लौटेंगे। और वो लोटा, जो लोटा बाबा मतलब लौटेंगे कृष्ण, ये जो कहता हुआ इंतजार कर रहा है कृष्ण का खीर पकड़ते हुए कि कृष्ण जरूर आएंगे, कृष्ण जरूर आएंगे। तो ऐसे उनके सखा उनके इंतजार में थे। और यहाँ पे कृष्ण पहुंच जाते हैं मथुरा, कंस का वध करते हैं, देवकी वसुदेव को कारागार से रिहा करते हैं और कृष्ण भी वृंदावन वापस जाना चाहते हैं। तो इसीलिए वे राजा नहीं बनते, वे उग्रसेन को राजा बनाते हैं। हालांकि जब प्रतिद्वंदी जो होता है, जो सामने वाले राजा को परास्त करता है, वो राजा बनता है, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था, कृष्ण को जो है राजा बनना था। लेकिन वे उग्रसेन को राजा बनाते हैं, वे सोचते हैं कि मुझे तो मेरे वृंदावन वापस जाना है, यहाँ का मैं काम लिपटाऊंगा और वृंदावन चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे राजा बन गया तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में तो वर्क फ्रॉम होम या जूम तो था नहीं कि चलो वृंदावन से कंट्रोल कर दूंगा मथुरा के राज्य को, वहीं रहना पड़ेगा। और वे वृंदावन वापस लौटना चाह रहे थे। तो उग्रसेन को राजा बनाते हैं और सोचते हैं कि बस अब मैं मेरे बाबा के साथ निकल जाऊंगा। लेकिन तब जब विश्राम घाट में कृष्ण आराम कर रहे हैं, तब पता चलता है कि अरे ये कोई सिंपल बात नहीं है, कृष्ण तो एक सिंपल विलेज बॉय थे ना, एक ग्राम एक गांव से एक सिंपल सिंपल हार्टेड लड़के, लेकिन अब यहाँ आने के बाद तो सब कुछ, ये जो क्षत्रिय का जो पूरा मैकेनिक्स होता है, पॉलिटिक्स, उनको समझ में आता है कि मैंने जो ये कंस का वध किया है, अब कंस का जो ससुर है जरासंध, उनकी दो बेटी थी प्राप्ति और अस्थि और प्राप्ति, तो अब जो है क्योंकि उनके दामाद का वध कृष्ण ने किया है, तो जरासंध पक्का आक्रमण करेगा, और अगर मैं वृंदावन चला गया तो जरासंध मेरे पीछे पीछे वृंदावन आएगा, और वृंदावन में जो गोप बालक स्वव्रजवासी है वो तो सब बहुत भोले हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनके पास कोई बड़े बड़े किले नहीं है कि वे अपने आप की रक्षा कर सके, तो मेरे वजह से सारे व्रजवासी जो है समस्या में पड़ जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन, मुझे उनकी रक्षा करनी है। तो फिर कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते, बाबा आप जाइए, थोड़े दिन में आ जाऊंगा, 4-5 दिन की बात है, यहाँ कुछ काम निपटाता हूँ, मैं आता हूँ, आप जाइए। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, दोनों साथ में चलेंगे। वो समझाता है, बाबा आप ऐसा मत कहिए, आप जाइए, माँ चिंता कर रही होंगी, बहुत दिन हो गए हम ब्रज को छोड़ के आए हैं, आप जाइए, सबसे बात करिए, हम मैं आता हूँ। तो नंद बाबा जब निकल रहे हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने मोर पंख, अपना मुकुट, अपना पीताम्बरी वस्त्र, अपनी वैजंती माला, अपने कान के कुंडल, जो भी उनकी जो थे वस्त्र, वे सारे कपड़े में बांध के नंद बाबा को दे देते हैं, कहते आप ये ले जाइए और वहां सबको उपहार के रूप में बांट दीजिए, मैं थोड़े दिनों में आपके पीछे आ रहा हूँ। और यहाँ व्रज में क्या हो रहा है, सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण के इंतजार में है सब, अभी आएगा अभी आएगा, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। तो सारे मिलके सोचते चलो हम ही चलते मथुरा, अगर वो नहीं आता तो हम चलते, हम लेके आएंगे उसको। लेकिन कोई और सखा बोलता है नहीं नहीं जाना ठीक नहीं होगा, कृष्ण क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कृष्ण ने वादा किया था कि मैं आने वाला हूँ, वो कृष्ण सोचेंगे देखो मुझ पे विश्वास नहीं है, सब मेरे पीछे पीछे आ गए, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, इंतजार भी नहीं किया, अच्छा नहीं लगेगा, चलो इंतजार करते हैं। और एक दिन और 2 दिन और 3 दिन, अब रहा नहीं जाता है, अब सारे उठ के चले जाते, बोलते नहीं कृष्ण जो सोचेगा सोचेगा, चलो चलते हैं सब मथुरा। अब सारे जब तैयार हो जाते हैं मथुरा जाने के लिए, दूर से देखते हैं नंद महाराज का ये आ रहा है, रथ आ रहा है, तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं कि कृष्ण आ गए हैं। और जैसे ही नंद बाबा का रथ और पास में आता है, सारे व्रजवासी नंद बाबा के जो रथ है उसको घेर लेते हैं, और जैसे ही नंद बाबा रथ से बाहर निकलते हैं, सारे पूछ रहे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, और नंद बाबा जो है मुंह लटकाए हुए है, सब पूछ रहे कृष्ण कहाँ है। तो यशोदा माता कहती है अच्छा कृष्ण तो बदमाश है, ऐसे थोड़ी रथ पे बैठ के जेंटलमैन के जैसे, सज्जन आदमी के जैसे थोड़ी आएगा, बंदर है वो, कहीं कहीं कोई झाड़ पे चढ़ गया होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, कहीं कहीं छुप गया होगा, तो मुझसे जो है तुम छुपा छुपी मत खेलो, कृष्ण तुम सामने आओ। और फिर नंद बाबा कहते हैं कि कृष्ण नहीं आया, तो इनको समझ में नहीं आता नहीं आया का क्या मतलब होता है, नहीं आया नहीं वो बाद में आएगा, नहीं बाद में आने का मतलब क्या होता है, वो तो छोटा है, उसको छोड़ के कैसे चले आए। सारे व्रजवासी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, और यशोदा माता जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, वात्सल्य भाव से नंद बाबा के ऊपर में गरज जाती है एकदम, कहती है कि शायद मथुरा में बड़े बड़े भवनों को देख के आप मेरे लल्ला को भूल गए, शायद मेरे लल्ला को आप बेच दिए कुछ पैसे के लिए, आप शायद उसको बेच के आ गए। और फिर जब नंद बाबा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण आ जाएंगे थोड़े दिन में, तब यशोदा माता और भी जो है गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि आपसे तो दशरथ अच्छे थे, कम से कम राम जी के विरह में अपने प्राण को त्याग दिए हैं, आप अभी भी जिंदा कैसे हैं, आपको कृष्ण पे प्रेम नहीं है। और फिर नंद बाबा उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, दशरथ के लिए तो आसान था, एक बार में वे अपने देह को त्याग कर चुके, लेकिन मैं तो पल पल कृष्ण के विरह में मर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण को इसीलिए बचा के रखा हूँ क्योंकि अगर कृष्ण वापस आएगा और देखेगा कि बाबा नहीं रहे तो उसको दुख होगा, तो उसके लिए मैं अपने शरीर को जो है मैं अपने शरीर को रखा हुआ हूँ। तो बस बहुत सारी बातें होती है और सारे रो रहे हैं व्रजवासी कि कृष्ण क्यों नहीं आए। और फिर नंद बाबा जो है वो पोटली बाहर करते, वो जो कपड़े में कृष्ण ने बांध के सबके लिए उपहार दिए हैं, नंद बाबा कहते ये लो सारे, कृष्ण बहुत सारे उपहार आपके लिए दिए, और कोई भी उसको छूता नहीं। और सारे बोलते क्या करें इसका, हमें ये नहीं चाहिए, जो इसको पहनता है हमें वो चाहिए, हमें कृष्ण से उपहार नहीं चाहिए, हमें कृष्ण ही चाहिए, और कोई उसे नहीं छूता है। सारे वहां से चले जाते हैं। अब नंद बाबा भी खाना पीना छोड़ देते हैं, व्रजवासी खाना पीना छोड़ देते हैं, बस केवल सब रो रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और 2-3-4 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत सब संभल जाते हैं तब धीरे से नंद बाबा के पास जाते हैं, सारे क्षमा मांगते हैं और फिर नंद बाबा से वो पोटली मांगते हैं कि कहाँ है हमारे कृष्ण की चीज़ों, सारी चीज़ जो सारे उपहार जो कृष्ण ने दिए थे हमें दिखाइए। और फिर एक एक करके सारे उपहार खोलते हैं, कोई कृष्ण की मुरली लेता है, तो कोई कृष्ण का मुकुट ले लेता है, तो कोई कृष्ण का पीताम्बर, कोई कृष्ण की माला, कोई कृष्ण के कुंडल, सब ले के सब एक एक लीला बता रहे। जब कृष्ण ने ये पहना था ना तब उसने मुझसे ये कहा था, जब ये कपड़ा पहना था तब ये बात कर रहा था, यहाँ पे कृष्ण ये कह रहा था, और सब रो रहे हैं। और जब वे कृष्ण के सारे आभरण कृष्ण के सारे कपड़े देखते हैं तो उन्हें कृष्ण का पूरा रूप बार बार मन में याद आता है। भागवत में वेणु गीत में गोपिया बहुत सुंदर एक श्लोक कहती है कृष्ण के रूप को वर्णन करते हुए, कहती है बरहा पीड़ं नटवर वपु कर्णये कर्णीकरं बिभ्रीहात वसह कनक कपीसं वैजयंती च मालं रंध्रान वेणुरधर सुधयो पूनये गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रविशाद गीत कीर्ति बरहा पीडम। मुकुट है भगवान कृष्ण का, मोर का पंख है थोड़ा सा ऊपर में है, और नटवर वपु जब वो चलते हैं तो लगता है कि कोई निपुण नृत्य करने वाला कैसे चलता है वैसी चाल में वो चलते हैं, और वैजयंती की माला है, कानों में कर्णिकर का फूल है, और हल्दी कलर के जो येलो कलर के गोल्डन येलो कलर के उन्होंने पीताम्बरी वस्त्र पहने हुए हैं, और हाथ में जो उनकी वेणु है वेणु के अंदर में रंध्र जो है होल्स बने हुए हैं, और उस रंध्रों में से कृष्ण अपने होठ से अमृत डाल रहे हैं, और गोप वृंद सारे गोप सखाओं के साथ वे वृंदावन के जंगलों में वृंदावन के वनों में वे विचरण करते हुए चलते हैं, और जहाँ जहाँ वो चलते हैं उनके पाद पद्म मुद्रित हुए हैं, सब जगह उनके पाद पद्म के चिन्ह है, और सब ये सारी वस्तुएं देख के बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। गोपियाँ रो रही है, राधा रानी रो रही है, यशोदा मैया रो रहे हैं, नंद बाबा तो चप्पल पहनना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जितनी बार पादुका देखते हैं कृष्ण की याद आती है, कैसे कृष्ण नंद बाबा की पादुका सिर पे लेके चलते थे, बाबा आपकी पादुका, बाबा आपकी पादुका, तो वे रो रहे हैं। गायें रो रही है, बछड़े रो रहे हैं, पक्षी वहाँ के जो मोर है नाचना छोड़ देते हैं, वहाँ के जो वृक्ष है, वहाँ के छोटे जीव जंतु है, और जहाँ जहाँ कृष्ण के चिन्ह है वहाँ वहाँ कोई ना कोई गोपी बैठी हुई है और उस चिन्हों को देख के रो रही है। वहाँ पे कृष्ण के पैरों के चिन्ह है, यमुना नदी जो है शांत हो जाती है, अपना प्रवाह बंद कर देती है, हर जगह पूरा वृंदावन स्मशान घाट बन जाता है, सब एकदम शांत, क्या करें। और यहाँ पे कृष्ण भी रो रहे हैं, उन्हें भी याद आ रही है, और यहाँ पे देवकी वसुदेव कृष्ण से कहते हैं तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम गुरुकुल नहीं गए हो, तुम्हें गुरुकुल जाना है, तुम राजा बनोगे आगे चल के, तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें गुरुकुल जाना चाहिए। वे कृष्ण को भेज देते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में। और यहाँ पे वृंदावन में क्या होता है, जैसे दिन दिन बीत रहे हैं ये लोग कहते बस और नहीं सहन होता, कृष्ण जो सोचेंगे सोचेंगे हमारे बारे में, इतने दिन हो गए कृष्ण नहीं आए, चलो सब चलते हैं। जब सब तैयार हो जाते हैं ठीक है चलो कृष्ण के पास जाते हैं, तब मैसेज आता है कि कृष्ण तो है ही नहीं मथुरा में, कृष्ण तो उज्जैन है, अवंती में है संदीपनी मुनि के आश्रम में है। तो ये गोपिका बोलती चलो कोई बात नहीं, जब कृष्ण आएंगे तब हम जाएंगे, थोड़े दिन और बस कृष्ण की कथा से वे अपने प्राण को बचा के रखे हैं। जैसे गोपी गीत में कहते हैं ना, तव कथामृतम ताप्त जीवन कवि भिरीडितम कल्म सापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। तव कथा अमृतम, भगवान की कथा का अमृत पी रहे हैं और अपने प्राण को बचा के रखे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि यमुना में जाके डूब मरे और नहीं जी पाएंगे कृष्ण के बिना, फिर सोचते हैं अगर कृष्ण वापस आए और देखा कि हम सब मर गए हैं, हम सब जिंदा नहीं है, तो फिर उनको कितना दुख लगेगा, तो कृष्ण को दुख नहीं होगा, इसलिए हमें बच के रहना है, हमारे प्राण को संभाल के रखना है, तो बस वे सब रो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम से वापिस आ जाते हैं। और जब कृष्ण वापस आ जाते हैं तब आप सोचते चलो अब जाऊंगा मैं वृंदावन, लेकिन फिर याद आता है कि अगर मैं अभी चला गया तो जरासंध मेरे पीछे पीछे वृंदावन आ जाएगा, तो नहीं जा पा रहे हैं। तो उस तरह से कृष्ण रोते रोते एक दिन जो है छत के ऊपर से वृंदावन जाने वाले मार्ग की ओर देख रहे हैं, जो रास्ता मथुरा से वृंदावन जाता है उस रास्ते की ओर कृष्ण देख के रो रहे हैं। और रोते रोते दूर से क्या देखते हैं, यमुना नदी को देखते हैं और देखते हैं कि यमुना नदी अब नदी नहीं रही, यमुना समुद्र बन गई है। तो सोचते हैं कि नदी समुद्र कैसे बन गई, जब मैं संदीपनी मुनि के आश्रम गया था उसके पहले तो ये नदी थी, नदी समुद्र कैसे बन गई। फिर भगवान को समझ में आता है कि व्रजवासी इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि उनकी आंखों के जो अश्रु है वो यमुना नदी में मिल गए, जो है यमुना नदी समुद्र जैसी बड़ी हो गई है। और अब कृष्ण और भी छोटे बालक के जैसे रो रहे हैं। और कृष्ण अपने मन में सोचते हैं करूँ तो क्या करूँ, एक बार उनको मैं समाचार दे दूं कि मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, थोड़े दिन समय लगेगा, किसको भेजूं किसको भेजूं, कौन देगा मेरा समाचार। और जब ऐसे कृष्ण सोचते हैं पीछे से एक हाथ उनको छूता है, कृष्ण मुड़ के देखते हैं उद्धव खड़ा है। और जैसे कृष्ण उद्धव को देखते हैं सबसे पहले भागवत में श्लोक आता है, कृष्ण कहते हैं गच्छा गच्छम उद्धव तुम जाओ, सबसे पहले ये नहीं कहते कि उद्धव तुम जाओ, पहले कहते हैं जाओ उद्धव तुम जाओ, कहाँ जाए व्रजा, कहते गच्छम उद्धव उद्धव, कहते गच्छम उद्धव व्रज सौम्यम व्रजम सौम्या, जाओ जेंटल वन ओ प्यारे उद्धव जाओ व्रज जाओ। क्या करूं व्रज जाके, मत संदेशा विमोचयाम, मेरा संदेश दे के आओ, वो जो सब दुख के सागर में डूबे हुए हैं मेरा संदेश उनको दे के आओ। अब उद्धव को समझ में नहीं आता, लेकिन पहले आप रोना तो बंद करिए, आप भगवान है, भगवान को कभी मैंने कभी नहीं सोचा था भगवान भी रोते हैं। तब कृष्ण जो है कहते आपको कोई तकलीफ है मथुरा में, क्या हम आपको क्या कोई कोई प्रॉब्लम है, उद्धव पूछते हैं। तो भगवान कहते नहीं मथुरा में सब ठीक है, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आप जो जो भी फैसिलिटीज जो आप है बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता। कहते उद्धव वृंदावन को मैं नहीं भूल पाता, वृंदावन में जिस तरह से वो मुझे प्यार करते। और फिर भगवान वृंदावन की महिमा उद्धव को समझाने लगते हैं, कहते उद्धव तुमको पता है जब छोटी सी छींक भी आ जाती है ना तो यशोदा माता इतनी पगला जाती है, इतने सारे वैद्यों को बुला लेती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, जप करवाती है, यज्ञ करवाती है, छोटी सी छींक के लिए वो इतनी व्याकुल हो जाती है, मुझे इतना प्यार करती है यशोदा माता, मुझे इतना प्यार करती है, लेकिन उद्धव मैंने उनको धोखा दिया, क्योंकि वो जब मेरे रथ के पीछे भागी भागी आ रही थी वो पूछ रही थी तो कान्हा तुम वापस कब आओगे, तो मैंने उनसे झूठ कहा, मैंने कहा परसों माँ दो दिन में आता हूँ, परसों आगमसी मैं दो दिन में वापस आ रहा हूँ, दो दिन में। तो मैंने जो है यशोदा माता से झूठ बोला। तुमको पता है जब मैं मुरली बजाता हूँ ना तो जो बछड़े होते हैं वो बछड़े सारे अपनी पूंछ को ऊपर करके मेरे पीछे पीछे भागते हैं, और अगर मैं मुरली बजाना बंद कर दूँ तो मेरी और देखते हैं, जैसे कि बस बंद क्यों किया और बजाओ। जब मैं मुरली बजाता हूँ तो चंद्रमा भी रुक जाता है, जब मैं मुरली बजाता हूँ तो यमुना अपना प्रवाह भूल जाती है, और जब मैं मुरली बजाता हूँ तो गाय अपने दाना को मुंह में लेके चबाना भूल जाती है। तो ऐसे कृष्ण वृंदावन के बारे में अलग अलग बातें बता रही है कि वे मुझे इतना प्यार करते हैं, वो गोपिया यशोदा माता नंद बाबा ये सारे मेरे मित्र मुझे इतना प्यार करते, लेकिन उधर मैंने सबको धोखा दिया, मैं उनको झूठ बोला, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा लेकिन मैं नहीं गया, वो मेरे विरह में रो रहे हैं, तो तुम जाओ मेरा समाचार उनको दे के आओ। फिर उद्धव कहते हैं समाचार दे तो दूंगा लेकिन मेरी भाषा वो लोग समझेंगे कि नहीं, क्योंकि गांव के है ना अनपढ़ गवार लोग कैसे समझ पाएंगे मेरी भाषा, ठीक है आप कुछ लिख के दे दो मैं पढ़ा के मैं जो है आप जैसे उनको समझ में आता है सरल भाषा में कुछ लिख दो, मैं आपका संदेश वहां जाता हूँ सुबह सुना के शाम तक वापिस आ जाऊंगा। कृष्ण कहते ठीक है जाओ। फिर उद्धव जाते हैं वृंदावन, और यहाँ क्या हो रहा है, अब वे इंतजार कर रहे हैं, संदीपनी मुनि का जो है आश्रम से आ गए होंगे ठाकुर जी, चलो हम सब तैयार होते हैं जाने के लिए। वहाँ व्रज में रोज एक ही काम है, सुबह से शाम उनको और कोई काम नहीं है, बस वे सब कृष्ण के इंतजार में हैं। गोपियाँ इंतजार कर रही है, गोप बालक इंतजार कर, गोप बालक क्या करते थे, वे जो झाड़ होते वृक्ष होते वृक्ष की डालियों पे बैठ जाते थे और दूर से मथुरा से जो वृंदावन आने वाला रास्ता है उसकी तरफ देखते रहते, एक टक देखते रहते कि आएगा आएगा आएगा, पूरा दिन देखते हैं, और जब शाम हो जाती है तब सारे नीचे उतरते हैं घर वापस जाते हैं। फिर अपनी अपनी मैया से कहते मैया कृष्णा आज भी नहीं आया, और फिर उनकी मैया कहते हैं कोई बात नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कल पक्का आएगा, चलो अब तुम सो जाओ कुछ खा लो, कल पक्का आएगा कृष्णा। तो ऐसे उनका रोज का रूटीन है। तो इस बार जो है वो सारे बैठे हैं कि कृष्ण आएंगे और सच में देखते हैं कि जो है एक रथ चला आ रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से कृष्ण गए थे, मथुरा से वृंदावन आने वाला रास्ता। तो सब इतने खुश, ये गोप बालक सारे एकदम कूदते हैं, अलग अलग जो झाड़ पे बैठे हुए, वृक्ष पे बैठे हुए, सारी डालियों से नीचे कूदते, भागते हैं रथ की ओर। मधुमंगल नहीं कूदता है, सारे कहते हैं अरे मधुमंगल मोटे ब्राह्मण उतरो, कृष्ण आ गया। मधुमंगल कहता है मैं नहीं आऊंगा, मैं रूठा हुआ हूँ, मैं ऐसे ही बैठूंगा, कृष्ण जब आएगा उसको कहो मेरे चरण छू के पहले मुझसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा मांगेगा तभी मैं आऊंगा, मैं तो रूठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो सब कहते ठीक है तुम रूठे रहो, हम तो जा रहे कृष्ण से मिलने के लिए। और जब सारे खुद के चले जाते तो मधुमंगल पीछे पीछे भागता है, फिर सारे उसका मजाक उड़ाते तुम तो कह रहे थे नहीं आओगे अब क्यों आ गए, बोलते नहीं बाद में रूठूंगा, बाद में रूठूंगा, इतने दिन हो गए ना, अब एक बार कृष्ण को आलिंगन कर लूंगा उसके बाद में रूठूंगा। अब सारे भाग रहे, भागे 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 एकदम उद्धव के रथ के पास में आ गए, रथ रुका, दरवाजा खुला, उद्धव रथ से बाहर निकला, सारे अचंभित, क्योंकि उद्धव देखने में थोड़ा थोड़ा कृष्ण जैसा था। कहीं कहीं लिखा है कृष्ण जैसे ही दिखते थे उद्धव, वही रूप रंग और अच्छे गुणों वाले बहुत ही सुंदर भक्त थे उद्धव, कृष्ण के भाई थे, कजिन ब्रदर थे, तो काफी देखने में कृष्ण जैसे थे। तो सब देखते हैं कि दिखने में तो कृष्ण जैसा ही है, फिर कहते हैं कौन है आप, कहाँ, आपको क्या चाहिए? और फिर उद्धव कहते हैं कि मैं कृष्ण का दूत हूँ, उनका संदेश लेके आया हूँ। और मधुमंगल कहता है वाह रे कृष्ण वाह, इतने महीनों में हमको याद भी नहीं किया और जब हमारी याद आई तो दूत को भेजा, ओ बड़े जेंटलमैन, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो ना, हमारे साथ क्या बात करोगे, युवराज हो इतने बड़े मथुरा नगर के। तो कहते हैं कि हाँ आइए दूत जी, आपको हम कहाँ ले चले, तो नहीं पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलेंगे, तो रास्ता बता दो उनके घर का। तो फिर ये जो है गोप बालक भी रोने लगते हैं कि क्या रास्ता बताएंगे, ये जो पानी आ रहा है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है, कोई बारिश का पानी नहीं है, ये पानी जो है ये यशोदा माता और नंद महाराज के अश्रु है। तो ये जो पानी का जो स्थान है, सोर्स है, जहां से पानी शुरू होता है, ये उनका घर है, तो इस पानी की धारा के पीछे पीछे आप चले जाओ। और फिर जो है उद्धव जो है गोप बालकों की सहायता से नंद बाबा के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां पे क्या सुनते हैं, नंद बाबा का जो भवन है, भवन के जो दीवाल है उसमें से भी एक ही आवाज, कृष्ण 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 कंटिन्यूसली, नंद बाबा यशोदा बस वही बात कृष्ण 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 और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और फिर जो गोप बालक है वो कहते हैं कि आप जब अंदर जाएंगे थोड़ा जोर से बात करिएगा, क्योंकि यशोदा माता इतना ज्यादा रोती है, इतना ज्यादा रोती है, रोके रोके अब जो है उनको आंख में दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, और क्योंकि बहुत ज्यादा रो रही है, कुछ खा नहीं रही है, कानों में भी ठीक से सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। तो फिर उद्धव जो है अंदर जाता है, यशोदा माँ और नंद बाबा को प्रणाम करता है और फिर यशोदा माता से कहता है कि मैया मैं उद्धव, जोर से कहता मैं उद्धव उद्धव मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेके। और यशोदा माता कहती धीरे से बोलो, अभी अभी कृष्ण को सुला के आई हूँ, अगर तुम जोर से बोलोगे वो उठ जाएगा, और बहुत मुश्किल से सुलाया है, और एक बार अगर उठ गया ना तो माखन मांगता है, कभी बोलता है शादी करवा दो, कभी बोलता है चंदा चाहिए, कुछ ना कुछ, बड़ी मुश्किल से सुला के लाई हूँ, धीरे धीरे बात करो। और फिर नंद बाबा जो यशोदा को होश में लाते, यशोदा कृष्ण मथुरा में है, मैं कृष्ण का संदेश लाया हूँ। तो यशोदा माता कहता अरे वाह, जब छोटा था रोता था तो मैंने कभी किसी किसी काम करने वाली को कृष्ण के पास नहीं भेजा, मैं खुद जाती थी भाग के, आज मैं रो रही हूँ तो कृष्ण खुद नहीं आके दूत भेजा, चलो कोई बात नहीं, तो क्या क्या लाए हो संदेश युवराज से? तो फिर जो है यशोदा माता उद्धव को बोलने ही नहीं देती, ये खुद ही इतनी सारी बातें कृष्ण के बारे में बताती, जब वो छोटा था तो ऐसा करता था, जब छोटा था उद्धव तुम्हें पता है एक बार क्या किया, कौवा से लड़ाई कर बैठा, मैं उसको रोटी खिला रही थी आंगन में, कौवे ने आके रोटी ले ली और कृष्ण इतना गुस्सा हो गया, कहा मैया मैं कौवे से युद्ध करूंगा और मैं रोटी वापिस लाऊंगा, ऐसा है मेरा कृष्ण, तुमको पता है उद्धव एक दिन कृष्ण ने क्या किया था, और तुमको पता है उसने इस दिन क्या किया था, और उसने तब क्या किया था, और पूरी रात कथा सुना रही है, दूसरे दिन पूरा चला गया, तीसरा दिन पूरा चला गया, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उद्धव सुन रहा है यशोदा माता बोल रही है, उद्धव सुन रहा है यशोदा माता बोल रही है। और फिर नंद बाबा जो है कहते हैं यशोदा उद्धव को प्रसाद उद्धव को कुछ, और फिर यू नो उद्धव भी रो रहा है और वो बार बार यशोदा माता को प्रणाम कर रहा है कि कितना अभिमान लेके जो मैं आया था मथुरा से, और आप सब इतने महान उत्तम स्थाई के भक्त हैं, सतत भगवान को अपने स्मरण में रखते हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं, अरे अरे भक्ति तुमको देखनी है तो मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर गौशाला में लेके चलते हैं, वहाँ पर सारी गायों को दिखाते हैं, तुमको पता है ये कृष्ण की फेवरेट गाय है, कृष्ण जब से गए तब से ये गाय ने पानी भी नहीं पिया, ये गाय तो खाती ही नहीं है, ये गाय ने ये, ऐसी हर एक गायों को, मोर बंदर गाय सारे पशु जान सबसे नंद बाबा मिलाते हैं। और फिर उद्धव जाते हैं गोपियों के पास, वहां पे भी गोपियां भी रो रही है, निकुंज वन में राधा रानी बैठी हुई है बीच में, आसपास में गोपी है। श्रीमद् भागवत में ये वृत्तांत आता है भ्रमर गीत नाम के अध्याय में, कैसे गोपियां रो रही है और गोपियां एक मधु हनी बी से, भ्रमर से, भौरे से बात कर रही है। तो वहां पे एक भौरा आता है और उद्धव अभी निकुंज में अंदर आए हैं और गोपी भौरे से कह रही है, कहती है ए भौरे छूना नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास मत आना, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे कुमकुम लगा हुआ है और ये कुमकुम कहाँ से लगा है हमें पता है, ये कुमकुम तुम्हें कृष्ण की फूल की माला जो कृष्ण गले में पहनते हैं उस फूल पे तुम बैठे थे, वहां से तुम ये कुमकुम लगा के आए हो। और कृष्ण की माला पे ये कुमकुम कहाँ से आया, मथुरा में जो अभी नई गर्लफ्रेंड, अभी जो नई गोपिया उसकी हो गई है मथुरा में, जरूर उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया होगा और उनके छाती का कुमकुम कृष्ण के ऊपर में लग गया और वो कुमकुम तुम पे लगा है और तुम वो कुमकुम हमें मत छुआना, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं छूना चाहते हैं। और एक गोपी कहती है, ए भौरे यहाँ आके कृष्ण के गुणगान मत करो, तुम शायद सोच रहे हो तुम कृष्ण के गुणगान करोगे तो हम शायद तुम्हें कुछ दान दक्षिणा दे दे, हम नहीं देंगे दान दक्षिणा, जाके ये गुणगान मथुरा में करो, जो नई नई दोस्त बनाए हैं ना कृष्ण उनका जाके गुणगान करो, शायद वो तुम्हें कुछ दान दक्षिणा दे, हमें नहीं सुनना है कृष्ण के बारे में। और एक गोपी आके बोलती है, हे भौरे सावधान, तुमने जिससे दोस्ती की है ना, दोस्ती करने के लायक नहीं है वो सबको धोखा देता है, तुम्हें पता है वो तो पहले पूर्व जन्म में तो झाड़ के पीछे से एक बंदर को मार दिया था बांध से, हाँ वाली को, बंदर है ना वाली को मार दिया था। और तुम्हें पता है बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया था फिर भी उसे बांध दिया था, और किसी एक नारी के पीछे माने सीता माता के पीछे उसके प्रेम में पड़ गया था तो किसी और एक नारी का जो है नाक कान काट दिया था, तो ऐसा है वो, तो उनके बारे में हमें मत सुना। अब तुम्हारी तो नई नई दोस्ती हुई है ना, तो शायद तुम सोच रहे होंगे कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सबको धोखा देता है, तुम उससे दोस्ती मत करना, यहाँ आके हमको उसके बारे में मत सुनाओ, तुम वहीं चले जाओ। तो ऐसे भावरे से बात कर करके वे रो रही है। एक गोपी तो वृक्ष को आलिंगन करके उसको पूछ रहे, क्या तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है, कोई हवा से बात कर रहे हैं तो कोई जमुना से बात कर रहे हैं, तो बस हर एक जो है वहाँ पे रो रहे हैं। और उद्धव ये सब देख के अचंभित, और फिर उद्धव गोपियों को बोलते, गोपियाँ ये देखिए ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे रोते रहोगे तो कैसे, वहाँ कृष्ण रोते हैं यहाँ आप रोते हो, देखो कृष्ण परमात्मा, कृष्ण भगवान, कृष्ण अंतर्यामी, कृष्ण सबके हृदय में है, कृष्ण हर जगह है, कृष्ण वायु में है, सब जगह है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप कृष्ण को प्यार करते कृष्ण आपके सामने, वे तो भगवान है परमात्मा, उन्हें और बहुत सारे काम होते हैं। आप जो है ध्यान करो, अपनी आंखों को बंद करके अपने मन को किसी और चीज में लगाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। तो सारी गोपियों को उद्धव योगा आसन करा रहे, बैठो सीधा, कमर सीधी रखो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अंदर सांस लो, सांस बाहर लो, मन को थोड़ा सा कृष्ण से थोड़ा और कहीं और डालने की कोशिश करो। और गोपियां आंख बंद करके जैसे उद्धव कहते हैं वैसे करते, 2 मिनट के बाद गोपियां आंख खोल के बोलते, उद्धव इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बोलते क्यों? बोलते बहुत बड़ी समस्या है, हम जब यमुना को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है, गोवर्धन को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है, झाड़ को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है, माटी को देखे तो दूध को देखे, गाय को देखे कृष्ण की याद आती है, ठीक है आंखें बंद कर ले तो फिर और भी ज्यादा याद आती है, क्योंकि यहाँ तो कम से कम झाड़ के साथ कृष्ण की याद आती है, यमुना के साथ, गाय के साथ, जब आंखें बंद करते तो केवल कृष्ण की याद आती है। तो बहुत सुंदर गोपियां गाती है, যদি নয়ন মুন্দে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি, নয়ন মিলিয়া দেখি সামনে, নয়ন মিলিয়া দেখি সামনে। যদি নয়ন মুন্দে দেখি, আঁখ যদি বন্ধ কর দেতে হো তো কৃষ্ণ দিখাই দেতে হ্যাঁ, আর ঠিক চলো আঁখ খোল দুঙ্গি তো সামনে দিখাই দেতে হ্যাঁ, তো খরে তো ক্যা করে, ইনকো ভুল নি পা রে হম। আর দেখি ইয়া পে উদ্ধব কোশিশ কর রে হে কি গোপিয়া কেসে কৃষ্ণ কো ভুলে, হম হমারি জিন্দগি কা পুরা প্রয়ত্ন হম ভক্তো কা হ্যা কেসে কৃষ্ণ কো স্মরণ মে রখে, কেসে কৃষ্ণ কো ইয়াদ রখে। আর ইয়া পে গোপিয়ো সে এক্সারসাইজ করবায়া যায় হ্যা, কেসে কৃষ্ণ কো ভুল পাওগি, থোড়ে দের তো খাওগি সোগি কুছ অর কাম কর পাওগি, তো ইয়ে সিচুয়েশন হ্যা। আর ইনফ্যাক্ট চৈতন্য মহাপ্রভু জব জগন্নাথ পুরি মে থে তো বহু সারি সুন্দর সুন্দর বে ভজন শুনতে থে, উসমে সে বিদ্যাপতি হ্যাঁ, চণ্ডীদাস হ্যাঁ, বহু সুন্দর সুন্দর ভজন লিখতে থে। আর ইয়ে সারে ভক্ত যে ভজন লিখতে থে বে কই এসে হি কই কবিত্ব কই আচ্ছা সে কই রাইমিং পোয়েম বনা দি ব্যসা নেই থা, বে দেখতে থে লীলা কো, আর উন জেসে লীলা কো দেখতে থে সঠিক এসে হি লিখতে থে। তো এক সুন্দর ভজন চৈতন্য মহাপ্রভু শুনতে থে, যাহা পে এক বহু সুন্দর লীলা বতাতে হ্যাঁ। বৈষ্ণব আচার্য কহতে হ্যাঁ কি রাধা রানী জব এক দিন কৃষ্ণকে লিয়ে রো রহি থি, তো রাধা রানী গোপিও কো বোলতি এক কাম করো, ইয়ে কৃষ্ণকে বিরহ কি ইয়ে যো পীড়া হ্যায় মুঝসে অর সহন নেই হোতি হ্যায়, এক কাম করো মুঝে বিষ দে দো, মে বিষ পি লেতে হুঁ মর যাওঁগি, তো কম সে কম মেরি ইয়ে শরীর কি পীড়া চলি যায়গি। তো ললিতা বিশাখা কহতে হ্যাঁ হম দে সকতে হ্যায় তুমি বিষ, হম থাম দে সকতে হ্যায় তুমি বিষ, লেকিন বিষ পিনে সে ভি তুম নেই মরোগি। রাধা রানী বোলতি ক্যু নেই মরোগি, তো ললিতা বিশাখা বোলতি ক্যুকি তুমনে আপনি আঁখো সে কৃষ্ণ কা সুন্দর স্বরূপ কা পান কিয়া হ্যায়, তো তোমারি আঁখে জো হ্যায় ও অমৃত কা পান কর চুকি হ্যায়, কৃষ্ণ কে অমৃত সুন্দর রূপ কা পান কর চুকি হ্যায়, আর তোমারে জো কান হ্যায় ও কৃষ্ণ কে অমৃত বাণী কা পান কর চুকি হ্যায়, কৃষ্ণ কি মুরলি অমৃত কা পান কর চুকি হ্যায়, আর তোমারে জো হোঠ হ্যায় ও কৃষ্ণ কো কে দিব্য শরীর কা পান কর চুকি হ্যায়, তোমারে শরীর জো হ্যায় কৃষ্ণ কো ছু চুকি হ্যায়। তো জব ইতনি সারি জগা সে তুম অমৃত কা পান কর চুকি হো, তো আব বিষ পিনে সে ভি ও কাম নেই করেগা বিষ, কিউকি বহুত জ্যাদা ডোজ হো গয়া না, নেক্টর কা ডোজ জ্যাদা হো গয়া, তো বিষ কাম নেই করেগা। তো রাধা রানী কহতি হ্যায় নেই, কোশিশ করো কুছ অর কোই কোই হেভি পয়জন না জিসসে হাম ইয়ে কর সকে, আর দেখো আগর মে মর গই না এক কাম করনা, মেরে শরীর কো জলানা মত। তো ললিতা বলতে ক্যা করে ফির যমুনা মে দে দে, নেই নেই যমুনা মে তো বিলকুল মত দেনা, তো ফির ক্যা করে বলতে তমল কে ঝাড় কি জো শাখা হতি হ্যায় না উসপে রখ দেনা, তমল কে ঝাড় পে ক্যু রখে, বলতে নেই রাধা রানী বলতে নেই তমল কে ঝাড় পে রখোগে তো মেরে মেরে আত্মা কো আনন্দ মিলেগা, ক্যুকি কৃষ্ণ কালো তমল কালো তাই তো তমল ভালো ভাসি, বলতে কৃষ্ণ কালা হ্যায় আর তমল ভি কালা হ্যায়, তমল তমল কা জো বৃক্ষ হতা হ্যায় ও কালে রঙ কা হতা হ্যায়, কৃষ্ণ ভি কালা হ্যায়, তো কম সে কম ও তমল কে ঝাড় পে মেরে মেরে শরীর কো রখ দোগে তো মেরে আত্মা কো শান্তি, কম সে কম কৃষ্ণ সে নেই মিল পাই তো কৃষ্ণ বর্ণম জো কৃষ্ণ জেসে হ্যায় কলর উনকো কম সে কম মে ছুকে রহুঙ্গি। তো ললিতা কহতি হ্যায় কি পর রাধা জব কৃষ্ণ আয়েঙ্গে তব হম ক্যা বোলেঙ্গে আগর ও বাপিস আ গে তো মথুরা সে, তো রাধা রানী বোলা ইসলিয়ে তো মানে কাহা না মেরে শরীর কো জলানা মত, জব কৃষ্ণ আয়েঙ্গে না তো দিখা দেনা মেরে শরীর কো, এ দেখো রাধা ইয়হি হ্যায় তমল কে ঝাড় পে জো হ্যায় উসকে শরীর কো রখা হ্যায়। তো বিশাখা বোলতি লেকিন রাধা এ দেখো তমল কে শাখা কে উপর মে তো এক কৌয়া বেঠা হ্যায়, তোমারে মৃত শরীর কো থোড়ি কৌয়া ছোড় দেগা, কৌয়া তো খা লেগা পুরে শরীর কো, কৃষ্ণ কে লিয়ে ফির হম ক্যা দিখায়েঙ্গে। তো রাধা রানী বলতি আরে এক কাম করো সখি, কৌয়ে কো বোলো জো খানা হ্যায় খা লে, দো আঁখে কে লেকিন ছোড় দে, ইউ দো আঁখে রখ দে বাকি পুরা শরীর খানে সে ভি চলেগা, ক্যু জব কৃষ্ণ আয়েঙ্গে তো ইয়ে দো আঁখে সে কম মে কৃষ্ণ কো দেখ পাওঙ্গি, জো ভি মেরে শরীর মে ইয়ে দো আঁখে বচা কে রখে। তো ইয়ে ইস তরহ কা জব বার্তালাপ চলতা হ্যায় তো বৃন্দা দেবী জো হ্যায় ওয়াহাঁ বৈঠি হ্যায় বলতি বস করো রাধা, মেরে সে ইয়ে সুনা নেই জাতা তোমারা ইয়ে জো দুঃখ তোমারা ইয়ে রোনা ধোনা, মে জাতি হুঁ মে যাওঁগি বৃন্দা, মে যাওঁগি মথুরা, কান সে কৃষ্ণ কো পকড় কে লেকে আতি হুঁ, মে আভি যাওঁগি, লেকিন এসা তুম এসা দুঃখী মুহ বনা কে রখোগি তো মে নেই যাওঁগি, হাসো এক বার হাসো। তো রাধা রানী বলতে হাসে কেসে, তো ফির বৃন্দা দেবী ক্যা করতি ওয়াহাঁ পে এক বাঁশ পড়া হুয়া হ্যায় ও একদম এসে মুরলি জেসে লগা কি কৃষ্ণ কি অ্যাক্টিং করতি, আর ফির রাধা রানী হাস দিতি হ্যায়, ফির বৃন্দা দেবী বলতে বস এসি মুস্কান রখো, মে আভি গই আভি আই, আভি গই শাম তক কৃষ্ণ কো কান পকড় কে লেকে আতি হুঁ। বৃন্দা দেবী যাতি হ্যায় সজ ধজ কে জাতি হ্যায়, শহর মে জানা হ্যায় হম তো গাঁও কে লোক হ্যায়, তো একদম জো হ্যায় সজ ধজ কে পৌঁছ জাতি হ্যায় মথুরা বৃন্দা দেবী। अब मथुरा में सब शहर के लोग हैं, और गांव की लड़की जब जाएगी शहर में तो पता ही चल जाता है उसकी चाल से, उसके हलन चलन से, एकदम ये कोई गांव की लड़की है, क्योंकि बड़े बड़े भवनों की तरफ ऐसे वैसे करके देख रही है, कैसी जगह है, क्या है ये जगह। तो सारे पूछ रहे, कहाँ से आई हो, गांव की छोरी हो? कहता हाँ, वृंदावन से आए हैं हम। बोलता अच्छा, आओ आओ हमारे साथ में आओ, हम लोग यमुना जा रहे हैं पानी लेने के लिए। मथुरा की लड़की है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, सिटी लड़कियाँ है ना, बहुत सारी बातें उनको पूछ रही है, क्या चाहिए, क्यों आई हो, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर है। और वृंदावन की जो गोपियाँ थी इतनी सुंदर थी, मथुरा की जो गोपियाँ है उनको सौंदर्य को देखती रह गई, कितनी सुंदर है ये लड़की। तो अच्छा तुम वृंदावन से हो, कहाँ है वृंदावन, कितना दूर है यहाँ से, बहुत सारी बातें पूछ रही है। तो फिर ये कहती है, सारी बातें मैं बताऊंगी, पहले मुझे कृष्ण से मिलना है। और फिर वो स्त्रिया जब ये बात सुनती है कृष्ण से मिलना है तो गुस्सा हो जाती है, राजा है, ऐसा कहो राजाधिराज श्री कृष्ण, कृष्ण से मिलना है, बात करने का तरीका है, तुम गांव वालों को बात करना नहीं आता, ऐसे कृष्ण ऐसा नहीं कहते, राजा है हमारा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जो भी राजा है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो किसी से मिलते नहीं है, उनको मिलने के लिए 7-7 गेट्स पार करने होंगे। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं उनको वृंदावन से जानती हूँ। फिर वो बोलती है, स्त्रिया बोलती है, ठीक है तुम जाओ, हमारी तो कोई पहचान नहीं है महल में जाने के लिए, देखो यहाँ से सीधा चले जाओ और कृष्ण का महल है। और वृंदा देवी पहुंच जाती है कृष्ण के महल के पास, और वहां पे सब सैनिक खड़े हुए हैं, बोलते क्या चाहिए, वो तो हम कृष्ण से मिलेंगे। फिर डांट लगाते हैं, कृष्ण से मिलेंगे ये क्या बात हो गई, कृष्ण को राजाधिराज तुमको कैसे मिलेंगे, कृष्ण तुम कौन हो? नहीं मैं उनको पहचानती हूँ। तो ठीक है पहचानती हो, कोई तुम्हारा कुछ कोई लेटर कुछ नहीं मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन उनको मेरा नाम बोलो। तो बोलते नहीं हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाओ। और फिर वृंदा देवी बोलती है, ठीक है आप मुझे नहीं भेजेंगे अंदर, कोई बात नहीं, मैं एक मंत्र जानती हूँ, बोलने से वो आपके जो राजा है खुद मेरे चरण में आके गिरेंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है बोलो, तुम्हारा क्या मंत्र है बोलो। फिर वृंदा देवी चिल्लाना शुरू करती है, राधे राधे राधे, और जैसे राधा रानी का नाम लेने शुरू किया, कृष्ण भागे भागे आए, कौन यहाँ पे मथुरा में मेरी राधा का नाम ले रहा है। भागते भागते आते हैं, देखते वृंदा देवी, और वृंदा देवी बहुत सज साज के जो है मुंह पे, गांव की स्त्रियां है ना तो मुंह पे घूंघट लगाया हुआ है, तो कृष्ण देख नहीं पा रहे। तो बोलते कौन है आप? तो वो कहते कि मैं वृंदावन से आई हूँ, आपके लिए संदेश लाई हूँ। तो कृष्ण कहते आइए आइए अंदर में आइए बैठिए। और फिर वृंदा देवी को महल में बिठाते हैं, और फिर कृष्ण पूछते हैं, तो आप कौन है, क्या नाम है आपका, किसने भेजा है आपको? और फिर वृंदा देवी कहती है, मेरा नाम मैं भूल गई, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई, भूल गई। कृष्ण हंसते हैं, भूल गई, कोई अपना नाम भूल जाता है क्या, कोई भूल जाता है क्या कि वो कहाँ से आया, ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुना। तो वृंदा देवी बोलती है, मेरी गलती नहीं है, इस जगह का ही ऐसा दोष है, यहाँ जो आता है वो भूल जाता है वो कहाँ से आया है, और वो भूल जाता है उसका नाम क्या है। तब कृष्ण समझ जाते हैं कि ये तो मुझे ही टॉन्ट मार रही है, बोलते ये जगह का दोष है, यहाँ जो आता है भूल जाता है, कहाँ से आया, क्या नाम है, किसके के साथ क्या संबंध था, सब भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो क्या समस्या है आपकी, हम तो राजा है तो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। बोलता हाँ समस्या तो है महाराज, बहुत बड़ी समस्या है, हम तो गांव के साधारण लोग हैं, हमारे पास में एक छोटा सा पक्षी था बहुत सुंदर, और उस पक्षी को हम पिंजरे में रखते थे, उस पक्षी को अच्छे से खिलाते थे, उस पक्षी को बहुत प्यार देते थे, लेकिन वो पक्षी एक दिन उड़ गया, और यहाँ पे मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री ने उस पक्षी को पकड़ लिया है, हम अपने पक्षी को वापस लेने आए हैं, हमें हमारा पक्षी वापस चाहिए। अब कृष्ण समझ गए क्या बात कर रहे, कौन से पक्षी के बारे में बोल रहे जिसको कुब्जा ने पकड़ लिया है। तो कृष्ण कहते देखो महिला मैडम, आपका प्रॉब्लम हमें समझ में आता है, लेकिन ये पक्षी हवा पानी ये किसी एक का नहीं है, ये तो प्रकृति का है। अब देखिए मैं हवा में सांस ले रहा हूँ, ये हवा वृंदावन से भी आ सकती है, ये हवा कोई और गांव से भी आ सकती है, मैं तो नहीं कह सकता ये वृंदावन की हवा है, मैं कैसे लूँगा। पानी कहीं से भी आता है, यमुना वृंदावन में भी बहती है, मथुरा में भी बहती है, पानी हवा पक्षी किसी का नहीं है, पक्षी भी हमने ही उसको प्यार दिया इसलिए वो हमारा है, ऐसा नहीं कह सकते, पक्षी तो सबका है, पक्षी तो कहीं भी उड़ के जाता है, पक्षी एक जगह में नहीं रहता, एक दिन एक जगह है तो दूसरा दिन दूसरी जगह चला जाता है। अब वृंदा देवी को जो है गुस्सा आता है, जब इतनी सारी बड़ी बड़ी फिलोसफी कृष्ण करते हैं, तब वृंदा देवी उठाती है अपनी साड़ी और फिर लगाती है साड़ी और कहते हैं अच्छा तो तुम ऐसे ही हो, पहले भी तुम जब मत्स्य रूप में आए थे तब ये मछली क्या करती है, मछली अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के पानी में गंदगी खाती है। तुम हमारी राधा रानी को छोड़ के यहाँ मथुरा की गंदगी कुब्जा के साथ रहना चाहते हो? अच्छा, और जब ये राधा रानी ये जो बात बोलनी वो शुरू करती है, तब कृष्ण एकदम रोते रोते वहां पे बेहोश, और वहां पे वृंदा देवी रोते रोते बेहोश, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है दोनों मतलब फिर से जो है अपनी कॉन्शियसनेस में आते हैं, और फिर वृंदा देवी उनको मैसेज देती है कि जल्दी से वृंदावन वापिस आओ, राधा रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो इतना जो है राधा रानी और गोपिया और नंद बाबा और यशोदा और ब्रज के सारे कृष्ण के विरह में रो रहे थे, और वे जब कृष्ण के पास आना चाह रहे थे तब उन्हें मैसेज मिला कि कृष्ण तो द्वारका चले गए हैं। तो ये सिचुएशन था, और तब एक दिन कृष्ण द्वारका से अपने वासुदेव देवकी अपने माता पिता के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ, अपने भ्राता बलराम जी के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे सूर्य ग्रहण के दिन, और उसी समय वहां पे गोपिका, राधा रानी, यशोदा, नंद बाबा, सारे व्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंचे, और वहां कृष्ण और ये व्रजवासियों का फिर से मिलन हुआ, और उन्होंने इतने सालों के बाद फिर से कृष्ण को देखा, और इतने सालों के बाद में कृष्ण ने फिर से व्रजवासियों को देखा, और जब व्रजवासियों ने कृष्ण को देखा तो वे रोने लगे, वे कहने लगे कृष्ण चलो हमारे साथ वृंदावन, अब बस बहुत हो गया, अब तुम चलो। कृष्ण कहते हैं हम तो मिल लिए ना, तुमने हमको देखा, हमने तुमको देख लिया, अब मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। तो कहते नहीं, ये मिलना नहीं हुआ हमें, तुम्हारे ये राजकुमार वाले वस्त्र पसंद नहीं है, हमें तो हमारे वो कृष्ण चाहिए, वैजयंती माला वाले, मोर मुकुट वाले, मोर पीछे वाले कृष्ण चाहिए, फिर से हमारे साथ वृंदावन आओ, रासलीला करो, माखन खाओ, हमसे ढेर सारी बातें करो। तो कृष्ण जब रथ पे बैठे हैं तो गोपियां जो है वे अपने अपने जो अपने बालों को बांधने की जो रस्सी होती है, जो अपनी साड़ियां होती है, चुन्नी होती है, सबको बांध बांध के रथ को जो है वो बांध के खींच रही थी कृष्ण को, चलो हमारे साथ वृंदावन, चलो हमारे साथ वृंदावन। ये है विश्व की सबसे पहली रथ यात्रा जहाँ पे कृष्ण को गोपिया जो है वृंदावन की ओर ले जा रही है। तो रथ पे जगन्नाथ जी माने कृष्ण है, बलराम जी है, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, तीनों है, और ये जो है गोपिका, गोपिया जो है वृंदावन की, उन्हें खींचती हुई वृंदावन ले जा रही है। तो ये है रथ यात्रा का भाव, पुनर्मिलन भगवान का अपने प्रिय भक्तों के साथ, प्रिय व्रजवासियों के साथ। इस सुंदर घटना को हम याद करके रथ यात्रा का महामहोत्सव हम मनाते हैं। तो अफकोर्स इसकी कई सारी लीलाएं, कई सारी इसकी क्या कहते हैं कहानियां हैं। मैंने हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज से एक बार सुना था, वे बता रहे थे कि रथ यात्रा पहली बार कब हुई, तो वे कहते थे उनका एक अलग वर्जन है। ऑफकोर्स इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं है, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला होती है। तो वे बता रहे थे कि एक दिन कृष्ण द्वारका में गोपी गोपी कहते हुए, राधा राधा कहते हुए अपने बिस्तर से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। तो जितना भी कोशिश करो वे पुनः आँखें खोल नहीं रहे थे। तो तब वहाँ नारद मुनि आए, तो नारद मुनि ने कहा ठीक है मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मैं अपनी वीणा से जो है वृंदावन धाम की जो महिमा है उसका गुणगान करूँगा, राधा रानी का नाम लूँगा, गोपियों का नाम लूँगा, तो कृष्ण जो है पुनः जो है होश में आ जाएंगे। तो बलराम जी कहते नहीं, जैसे ही तुम ऐसा करोगे कृष्ण बोलेंगे मुझे अभी का अभी वृंदावन जाना है, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उद्धव जो वहां पे थे वो कहते ठीक है एक काम कर सकते हैं, हम रथ को तैयार रखते हैं, दारुक जो है कृष्ण का जो चैरियट ड्राइवर उसको भी हम रेडी रखते हैं, जैसे ही कृष्ण होश में आते हैं अगर वो कहेंगे कि मुझे अभी का अभी वृंदावन जाना है तो सब कुछ रेडी रहेगा और कृष्ण को जो है हम वृंदावन भेज देंगे। तो बलराम जी बोलते हैं लेकिन समस्या है, अगर कृष्ण वृंदावन जाएंगे और वो देखेंगे जिस तरह से गोपियां, राधा रानी, यशोदा मैया उनके लिए रो रही है, तो कृष्ण और भी जो है दुखी हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले किसी को भेजते हैं जाके उनको चुप करे, उनको पहले सांत्वना दे कि कृष्ण आ रहे हैं, तुम सब तैयारी करो, नहीं तो अभी तो व्रज पूरा श्मशान है, कुछ एकदम शांत, सब रोते हुए हैं वहां पे, सब जो पतले पतले हो गए हैं, सब जो है बहुत ही दुख में है। तो बलराम जी कहते हैं उद्धव तुम जाओ, तुम जाके व्रजवासियों को बोलो कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव बोलते मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं पहले गया था और जब मैं गया था तब मैंने गोपियों को वादा किया था, यशोदा मैया को वादा किया था कि मैं अभी जा रहा हूँ और जाके सीधा कृष्ण को वापस लेके मैं आऊंगा, लेकिन मैंने मेरा वादा नहीं रखा, कृष्ण को वृंदावन मैं नहीं लेके आया, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो सब देखते हैं बलराम जी की तरफ, आप जाओ। बलराम जी बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक बार तीर्थ यात्रा में गया था प्रयाग वगैरह और मैं वहां से गया था वृंदावन, 2 महीना वहां पे रह के आया, वहां पे जब मैंने देखा मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं, गोपियां राधा सब रो रही है, तब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं द्वारका जाके ही कृष्ण को लेके आऊंगा, लेकिन मैंने मेरा वादा पूरा नहीं किया, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा। फिर वहां सुभद्रा आती है, कहती ठीक है मैं जाऊंगी, मैं जाके सबको चुप करती हूँ, आप कृष्ण को लेके आइए। फिर बलराम जी कहते नहीं तुमको अकेले कैसे भेजेंगे, तुम तो मेरी बहन हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चलो दोनों मिलके जाते हैं। तो फिर सबसे पहले जो है बलराम जी अपने रथ में सामने बैठ जाते हैं, पहले बलराम जी का रथ जाता है, उसके बाद में पीछे सुभद्रा जा रही है, और यहाँ पे जैसे ही बलराम जी का रथ निकलता है, सुभद्रा का रथ निकलता है, वैसे ही नारद मुनि जो है अपनी वीणा पे शुरू कर देते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बस शुरू कर देते एकदम राधा रानी की गुणगान, और जैसे ही कृष्ण आँख खोलते मुझे वृंदावन जाना है, हाँ चलिए वृंदावन आपके लिए रथ रेडी है। और क्योंकि कृष्ण एकदम एकदम जो है राधा रानी के विरह में बस रो रहे हैं, तो उनको रथ तक ले जाने के लिए भी मुश्किल हो रही है, कभी इधर गिर जाते हैं तो कभी उधर गिर रहे हैं, तो कैसे भी करके जो है उनको उद्धव और सब मिलके उनको रथ पे बिठा देते हैं। और इस तरह से पहले बलराम जी का रथ जाता है, फिर सुभद्रा का रथ जाता है, और फिर जगन्नाथ जी का रथ जाता है, और उस तरह से जो है रथ वृंदावन पहुंचता है। तो ये है रथ यात्रा जो हम पूरी में देखते हैं, पहले बलराम जी का रथ, फिर सुभद्रा जी का रथ और जगन्नाथ जी का रथ, और हम देखते हैं ना पांडु विजय, वो जो सेरेमनी होती है जहाँ पे यू नो ऐसे ऐसे, और हमें लगता है कि ये जान मूझ के शायद ना, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है तो बड़ी मुश्किल से जगन्नाथ जी को बिठाते होंगे, लेकिन उनके जो हेड पांडा जो उनके जो पुजारी है उन्होंने एक बार बताया था कि आप लोग को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनको झुला नहीं रहे हैं, वो इतना झूल रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल करने में इतने लोगों की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भगवान एकदम मदहोश होते हैं, एकदम राधा रानी को याद करते हुए विरह में रोते रहते कि मुझे जल्दी से जाना है। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो मेन मंदिर है उसे नीलाचल कहा जाता है, वो द्वारका है, और जहाँ पे वो जाते हैं गुंडीचा उसे सुंदराचल कहा जाता है, वो वृंदावन है। तो अब वहाँ वो द्वारका से जा रहे हैं वृंदावन, तो एक बस अलग से भाव में वो है। तो ऐसे उनको जो है रथ में लिया लेके जाया जाता है, और हम सबका रोल क्या है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उत्साह से भगवान को हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम जो है रथ को खींचते हुए ले जाते हैं, राइट। तो भगवान से जो है हम भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि देखिए ठाकुर जी क्या है वो आपकी जो डोरी है वो भी हमारे हाथ में है, हम जल्दी जल्दी खींचेंगे तो आप जल्दी जल्दी पहुंचेंगे राधा रानी से मिलने के लिए, और हमारी जो जीवन की डोरी है वो आपके हाथ में है, आप भी जल्दी जल्दी खींच के हमें गोलोक वृंदावन वापस बुला लीजिए। बहुत सुंदर एक हिंदी भजन है, मुझे अभी पंक्तियाँ याद नहीं आ रही है, बोलते हैं कि वो दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तो आपके हाथ है, आप मुझे जल्दी जल्दी बुलाए, आपकी डोरी मेरे हाथ में है, मैं हम खींचेंगे जल्दी तो आप पहुंचेंगे जल्दी राधा रानी के पास, तो हम पे आप कृपा बरसाइए। तो ये है रथ यात्रा की सिग्निफिकेंस, बहुत ही सुंदर सेवा है, हम जो ये रथ में ठाकुर जी को जो खींचते हुए ले जाते है, ये केवल ठाकुर जी को वृंदावन पहुंचाने की लीला नहीं है, ठाकुर जी को खींचते हुए हमारे हृदय के वृंदावन के अंदर में ले जाने की लीला भी है। जब हम जगन्नाथ जी को ऐसे खींचते हैं तो वो हमारे हृदय के वृंदावन में आके बैठते हैं। तो ये रथ यात्रा की जो ये सेवा है ये बहुत ही सुंदर सेवा है, ठाकुर जी को हम जो है उनकी प्रियतमा से मिला रहे हैं। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब वे जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, 18 साल वे जगन्नाथपुरी में थे और हर साल वे इतने उत्साह से जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, कीर्तन करते हुए, और भक्तों को देखने में इतना सुंदर दृश्य लगता था क्योंकि यहाँ पे दो 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 कृष्ण है, एक कृष्ण जो कृष्ण के भाव में है माने जगन्नाथ जी, जो राधा रानी के विरह में रो रहे हैं वो राधा रानी से मिलना चाहते हैं, और यहाँ पे जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु वो राधा रानी है, वो कृष्ण के विरह में है। तो जो रथ पे बैठे हैं वो राधा रानी के विरह में है, जो रथ के नीचे नाच रहे हैं वो कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, और दोनों का सम्मेलन एकदम है ना फेस टू फेस, और ऐसा सुंदर दृश्य है वो। तो ऐसा इसलिए जगन्नाथ पुरी धाम की बहुत महिमा है कि आप द्वारका देखो, ऐश्वर्य धाम, आप नवद्वीप देखो, औदार्य धाम, आप वृंदावन देखो, माधुर्य धाम, लेकिन जगन्नाथ पुरी तीनों धाम का मिश्रण, वहाँ पे ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, औदार्य भी है, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु खुद थे इसलिए वो नवद्वीप धाम भी है, और जो मेन टेम्पल है वो द्वारका है, और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है। तो पूरे रसों का मिश्रण जो है जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथपुरी की ये जो रथ यात्रा है ये पहले तो केवल पुरी में हो रही थी, लेकिन कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया भर में इस रथ यात्रा का आरंभ किया, और ये उन्होंने कब किया था, 1967 में जब वे सैन फ्रांसिस्को में थे, तब उनकी एक महिला शिष्य मालती माता जी के नाम पे जो थी, मालती माता जी, वह जानती नहीं थी, उन दिनों में इस्कॉन में कोई विग्रह पूजा तो होती नहीं थी, केवल एक पेंटिंग या पोस्टर लगाए हुए थे, तो वो एक कॉस्ट प्लस नाम की एक दुकान में वे जाती है जहाँ पे मेक्सिको से इंडिया से बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स बेचते हैं वो चीप रेट में। तो वहाँ पे वो जब ऐसे ही घूम रही थी, कुछ अगर काम की चीज़ मिल जाए, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया जैसा है, लेकिन अजीब सी लग रही थी गुड़िया, ना हाथ है गुड़िया के, ना पैर है, लेकिन आँखें है, और जब वो देख रही थी तो पीछे देखा स्टिकर है मेड इन इंडिया। तो जैसे हमारी इंडियंस को नहीं होता कोई भी चीज़ मेड इन अमेरिका, मेड इन सिंगापुर, तो एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है, 10 रुपये ज़्यादा भी हो तो ले लो क्योंकि मेड इन अमेरिका है या मेड इन इंग्लैंड है। तो ऐसे ही उन भक्तों को उन दिनों में मेड इन इंडिया मतलब इतना खुश हो जाते कि भारत से है और स्वामी जी भी भारत से है, तो शायद स्वामी जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने वो गुड़िया खरीद ली और फिर जो है एक शेल्फ में रख दी, और उन दिनों में ग्राउंड फ्लोर में मंदिर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर में प्रोपा जी रहते थे। तो मालती माता जी प्रसाद बना रही थी और उस जो डॉल को वहाँ पे रखा हुआ था वो श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद महाराज जो भी है वो वहाँ पे प्रोपा जी को दिखाते हैं उनके टेबल पे, देखिए ये इंडिया से आया है, कॉस्ट प्लस दुकान से मालती लेके आई है। और प्रोपा जी जब उसको देखते हैं कहते हैं ये गुड़िया नहीं है, ये भगवान है। और श्रील प्रभुपाद साथ ही साथ में जो दंडवत प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, ये तो जगन्नाथ जी है, इनको समझ में नहीं आता है, बोलते मालती को बुलाओ। तो मालती माता जी को खबर भेजते कि प्रभुपाद तुम्हें अभी देखना चाहते हैं। मालती माता साथ ही साथ में वो खाना बना रही थी, मतलब प्रसाद बना रही थी, गैस बंद करती है और भागती है। उन दिनों में तो लिफ्ट थी हालांकि, लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर में इतना विशेष प्रेम, प्रभुपाद जी बुला रहे मतलब और कुछ और काम नहीं करते, सीधा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई मालती माता जी ऊपर भागी, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रोपा जी ने पूछा कि कहां से लाई तुम, पता नहीं एक दुकान थी कॉस्ट प्लस, और प्रोपा जी ने कहा और भी थी क्या, तो मालती ने कहा और बहुत सारी गुड़िया थी, तो प्रोपा जी ने बोला बहुत सारी नहीं, इसके जैसे और एक दो थी क्या, पीली रंग की, वाइट कलर की, सादे, तो उन्होंने कहा सफेद रंग की, हाँ थी सफेद रंग की और पीले रंग की भी दो गुड़िया और थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी का भी लेके आओ, फिर वो जाके जो है उनको लेके आती, और फिर जो है प्रभुपाद जी सही से सजाते हैं जगन्नाथ, सुभद्रा को बीच में रख के, बलदेव को रख के, और फिर कहते ये है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ पूरे जग के, पूरे विश्व के नाथ, ये जगन्नाथ है, ये उनके भाई बलदेव है और ये उनकी बहन सुभद्रा है। और फिर श्रील प्रभुपाद पूरी कहानी सुनाते हैं, 2000 साल पहले ऐसे ऐसे हुआ था, इंद्रद्युम्न नाम के एक महाराज थे जिनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ये दारु ब्रह्म दारू ब्रह्म माने जो लकड़ी के रूप में, लकड़ी के ब्रह्म जो दारू ब्रह्म जो बन के वे आए हैं, और कैसे वहाँ पे जो है उनके लिए मंदिर स्थापना किया गया था, और पूरी हिस्ट्री बताते हैं, और भक्त लोग इतने खुश हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी श्याम सुंदर से कहते हैं, क्या तुम इसको बड़ा साइज में बना पाओगे? क्योंकि वो सिर्फ 3 इंच की थी, छोटी छोटी गुड़िया 3 इंच की। तो कहते हैं हाँ बना सकता हूँ। तो फिर वो सारे मेजरमेंट्स लेके 3 फीट के बड़े बड़े जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति बनाते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जो है सेंट फ्रांसिस्को को नाम देते हैं न्यू जगन्नाथ पुरी, और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना होती है। और सर्वप्रथम पहली बार इस्कॉन के हिस्ट्री में विग्रह आए हैं। अभी पहले तो विग्रह नहीं थे उनके, जस्ट एक पोस्टर की जो है पूजा करते थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि इसकी स्थापना कैसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कैंडल लेके आओ, और कैंडल को जो है एक प्लेट पे रखो, और फिर तुम लोग गोल गोल घुमाओ। तो उनको समझ में नहीं, तो क्या करें स्वामी जी, कैंडल को ऐसे घुमाए गोल गोल, बस ऐसे घुमाओ ठाकुर जी के सामने, और एक एक बाई एक तुम, फिर उसके बाद ये करेगी, फिर उसके बाद वो, तुम सब बारी बारी से। तो फिर वो जो है बारी बारी से जगन्नाथ जी को वे घुमाते हैं, मतलब कैंडल दिखाते हैं, क्योंकि धूप दीप तो है नहीं। और फिर जगन्नाथ जी की वहां पे प्रतिष्ठा होती है। और दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद देखते जगन्नाथ मिसिंग, जगन्नाथ नहीं है। फिर कहते जगन्नाथ कहाँ गए? तो बोलते नहीं, हम जा रहे थे मॉर्निंग वॉक गोल्डन गेट पार्क में, तो हम जगन्नाथ जी को भी लेके चले जा रहे, वो बोर होंगे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करते, विग्रह को नहीं ले जा सकते, आप जहाँ जाते वो यहीं रहेंगे। तो ये पहली बार जो है वो जगन्नाथ जी को, अभी भी हम वो फेमस फोटो देखते हैं गोल्डन गेट पार्क में, जगन्नाथ जी को बिठा दिया झाड़ के नीचे और वे लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उस तरह से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और फिर प्रभुपाद जी मन में सोचते हैं कि ये सारी जगन्नाथ की लीला है, वे अपने आप से आए हैं, मैंने तो बुलाया नहीं उनको, लेकिन वे खुद से आए हैं कि अब समय आ गया है मेरी स्थापना करो। शायद उसी तरह से प्रभुपाद, उसी तरह से शायद जगन्नाथ जी बाहर घूमना भी चाहते हैं शायद, क्योंकि अदरवाइज कैसे उस भक्त के मन में ऐसा आया कि मैं जगन्नाथ को बाहर लेके जाऊँ। और फिर प्रभुपाद उन सबको बिठा के समझाते हैं कि जब मर्जी ऐसे बाहर नहीं ले जा सकते, इसकी भी एक प्रथा है, इसकी भी एक फेस्टिवल है, उसको कहते हैं रथ यात्रा। आप जो है रथ बनाओ और फिर जगन्नाथ को उस रथ पे ले जाओ, और फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो और कीर्तन करो। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है करेंगे। तो फिर एक ट्रक लेके आते हैं, और ट्रक के ऊपर में जो है 6 कॉलम देते हैं, और एक बड़े सी कैनपी लगाते हैं, और सुंदर सा रथ बनाते हैं, और फिर रथ यात्रा करते हैं। पहली रथ यात्रा 9 जुलाई 1967 में सैन फ्रांसिस्को में होती है। लेकिन चलो प्रभुपाद वो रथ यात्रा अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उन दिनों में वो बीमार थे। तो बोलते आप लोग करो, मैं जो है गाइडेंस दूंगा। उसके बाद अवश्य प्रभुपाद फिर अलग अलग रथ यात्रा में जाने लगे, और सैन फ्रांसिस्को ही नहीं दुनिया भर में, अब तो हम सुनते हैं कि दुनिया की अलग 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 देशों में आई थिंक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा हो रही है। तो एक्चुअली जगन्नाथ माने जगत के नाथ, लेकिन जगन्नाथ का ये नाम जो है श्रील प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं ना, सार्थक किया। माने ऑफकोर्स ठाकुर जी करवाते हैं, अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं, लेकिन ये श्रेय प्रभुपाद को जाता है कि उन्होंने जगन्नाथ को जगन्नाथ बनाया। जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है हर जगह जो है उन्होंने ये किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बचपन से काफ़ी अटैच थे इस रथ यात्रा के पूरे फेस्टिवल से, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ग्रैंडली होता था। प्रभुपाद जी के जो फ्रेंड्स थे मलिक एंड फैमिली, वो लोग बहुत बड़ा ग्रैंडली रथ यात्रा करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी जब छोटे भी थे ना, तभी भी उन्होंने एक बार उनके पिताजी से कहा था कि मुझे मेरी अपनी रथ यात्रा चाहिए। फिर गौर मोहन डे उनके पिताजी उनको दुकान में लेके गए, लेकिन 2-4 दुकान घूमने के बाद गौर मोहन डे उनके पिताजी ने कहा कि काफ़ी कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी रास्ते पर बैठ के रो रहे थे, तो फिर वहाँ पर एक बुढ़िया, एक बंगाली लेडी आई, बोले आपका बेटा इतना रो क्यों रहा है? बोलता उसको रथ चाहिए लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने कहा मेरे पास में है एक पुराना रथ, आप चाहे तो उसको ले सकते हो, मेरे को कोई काम का नहीं है वो। तो फिर उसके घर जाते हैं, वो रथ को लेके आते हैं, और फिर अपने घर में उसको पेंटिंग करना, रिपेयर करना, 16 कॉलम्स बना के, छोटी कैनोपी बना के, फिर उस पर घोड़े लगा के बहुत सुंदर से जो है प्रभुपाद जी और उनके पिताजी दोनों मिलके उसको काफ़ी सजाते हैं, और फिर 8 दिन का प्रोग्राम करते हैं। और प्रभुपाद जी की माता रजनी माँ वो भी बहुत सुंदर कचौरिया और प्रसाद बनाती है, और पूरे नेबरहुड में पड़ोसी जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इतना सुंदर वो 8 दिन का कार्यक्रम हुआ कि जो बड़े लोग थे वो भी आके प्रभुपाद जी के पिताजी को कह रहे थे कि हमें क्यों इनवाइट नहीं किया। तो फिर प्रभुपाद जी के पिताजी हंस रहे थे कि नहीं नहीं बच्चों का खेल है, नहीं नहीं आप बच्चों का खेल बोल के हमें इग्नोर कर रहे हो, हम भी आना चाहते हैं, कितना सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। तो बचपन में प्रभुपाद ने जो है पहली रथ यात्रा की थी, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद नो लुकिंग बैक, बस एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी जो रथ यात्रा प्रभुपाद जी के समय से भी हो रही थी, और अब तो खैर इस्कॉन में इससे एकदम क्या बोलते हैं ना ब्लास्ट, इतने हजारों लाखों की तादाद में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, और कितनी सुंदर तरीके से इस्कॉन जो है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। और रथ यात्रा की बात जब आती है तो एक भक्त के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी प्रवचन कंप्लीट नहीं होगा, और वो है जयानंद प्रभु। 1967 में जयानंद प्रभु नाम के एक लड़का जो है, आई थिंक उनका नाम जैक था शायद, तो 1967 में वे मैकेनिकल इंजीनियर थे, और हालांकि प्रोफेशन से वे टैक्सी ड्राइव करते थे, तो वे इस्कॉन में ज्वाइन हुए और उन्होंने बहुत योगदान दिया है इस रथ यात्रा के रथ को बनाने में। इतने एक्सपर्ट थे वे, बनाते थे बहुत सुंदर से, जो डिज़ाइन करते थे रथ को बनाते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, और हर एक पहलू रथ यात्रा के फेस्टिवल के हर एक पहलू में उनका विशेष योगदान था। मतलब वो रथ यात्रा का एडवर्टाइजमेंट करना, रथ को बनाना, फूल लेके आना, सजाना, लोगों को इनवाइट करना, और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना, और दान डोनेशन लेके आना दुकान से दुकान, जो वहाँ भी जो मॉल्स हैं जहाँ पे लोगों को साथ में मिलना, और किसी से फ्री में फ्रूट्स लेके आए तो किसी से फ्री में कोई सब्जी लेके आ गए, तो ऐसा जो है करके दान डोनेशन सब कलेक्ट करना। और बिल्कुल अभिमान नहीं था, उनके इतने सुंदर गुण थे जयानंद प्रभु के, खुद ही सारा काम करते थे और दूसरों को जो है क्रेडिट देते थे। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज, वे जयानंद प्रभु से इम्प्रेस होके ही इस्कॉन में जो है आए हैं। वे हमेशा कहते हैं कि वे मेरे पथ प्रदर्शक गुरु है, क्योंकि वे जब नए नए इस्कॉन में आए तो जयानंद प्रभु एक रथ यात्रा का जो है काट बना रहे थे, और वे जो नेल्स होते हैं ठोक रहे थे, किले ठोक रहे थे, और ये नए आए थे हमारे गुरु महाराज तो साइड में खड़े थे, तो बोला तुम पकड़ोगे क्या, थोड़े किले को पकड़ोगे, मैं थोड़ा ठोकूंगा, तो बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसा पकड़ा और ये थोड़े किले ठोके, 4-5-10 किले यहाँ वहाँ ठोक दिए। उसके बाद जब पूरा रथ का ये बन गया तो दूसरे भक्त जब कहने लगे अरे वाह कितना सुंदर तुमने किया, तो जयानंद प्रभु ने कहा मैंने नहीं इसने किया। तो तब हमारे जो गुरु महाराज जो नए आए तो उन्होंने कहा कि उस मोमेंट में मुझे लगा कि ऐसे होते हैं क्या भक्त, बाहर के जगत में तो आपने जो नहीं किया है उसका भी क्रेडिट आपको चाहिए, लेकिन भक्त ऐसे होते हैं क्या, करने के बाद भी दूसरों को क्रेडिट देते हैं। तो उनका पर्सनल बिहेवियर उन्हें इतना इम्प्रेस कर गया कि उन्हें और भी इस्कॉन के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी है। इसमें से हम बहुत सुंदर एक सीख ले सकते हैं कि एज ए डिवोटी हम जब ये तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, और अपने आप को इस्कॉन के भक्त की पहचान हम दूसरों को देते हैं, तब हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा बिहेवियर क्या है, क्योंकि लोग हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमारे बिहेवियर से जज करेंगे। अगर हमारा बिहेवियर सुंदर होगा तो उन्हें लगेगा हाँ मुझे भी जानना है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जयानंद प्रभु के साथ में जो भी संपर्क में आते थे वे भक्त बन जाते थे। वे व्यास आसन में कभी बैठ के प्रवचन नहीं देते थे, वे कहते थे दूसरों को देने के लिए। हालांकि वे कभी टेंपल प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे, छोटी मोटी सेवा करते थे, कभी कोई वैन रिपेयर कर दिया, तो कभी कूड़ा कचरा साफ कर दिया। तो मुझे याद है एक भक्त जो नया आया था इस्कॉन में, आगे चल के उसने दीक्षा ली थी, लेकिन उसने कहा कि मैं नया नया आया था और वहाँ पे केशव प्रभु थे टेंपल प्रेसिडेंट, मैंने उनको पूछा कोई सेवा, तो उन्होंने कहा देखो जयानंद को पूछो कुछ ना कुछ सेवा देगा। तो उस टाइम पे जयानंद प्रभु क्या कर रहे थे, कूड़ा कचरा जो है ट्रैश कैन वो पूरा ले जाके जो जहाँ पे डालना पड़ता है, जो डंप करना पड़ता है, उस काम में थे। तो ये लड़का जो है वहाँ पे आया तो बोला हाँ मुझे कुछ सेवा दो, बोला ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब वो उसके पीछे पीछे आ रहा था तब उनकी वाणी देखिए, उनकी बातों की मिठास, कहते देखो मेरी कितनी सौभाग्य है, रोज वो जो गार्बेज मैन आता है ना वो उठा के चला जाता है, देखो संभव 2 दिन से वो आया नहीं और मुझे ये चांस मिल गया, देखो मैं मंदिर का जो भी सब वेस्ट है मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जाके इस पर डंप कर रहा हूँ, देखो मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है। तो तब ये जो नया भक्त था उसने सोचा कि जिस मंदिर का कूड़ा कचरा फेंकने वाला भी इतना प्यारा है, इतना आनंदमय है, तो उस मंदिर में और सेवा करने वाले कितने प्यारे होंगे। तो इसको उतना मतलब उत्साह आ गया कि उसने और भी भक्ति के बारे में जानने की कोशिश की, और आगे चल के जो है अच्छा भक्त भी बना और दीक्षा भी ली। तो ऐसे कई कई महाराज लोग जो अभी हमारे इधर महाराज है हमारी संस्था में, उनसे अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ जयानंद प्रभु हमारे बड़े बड़े बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे. और नॉट ओनली दैट, जब उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना जीवन अंकित किया तो अपनी लाइफ की सेविंग्स जो भी था उनके पास, $5,000 थी उनकी पूरी लाइफ की सेविंग, पूरा पूरा प्रभुपाद जी को दे दिया. अरे कोई होता तो कहेगा ठीक है थोड़ा दूंगा, थोड़ा मेरा जस्ट फॉर माई सेफ्टी, कुछ भी नहीं सब कुछ दे दिया. और नॉट ओनली दैट, पूरा दिन रात मंदिर में सेवा करते थे और फिर टैक्सी भी चलाते थे, और टैक्सी चलाने से जितना पैसा आता था वो प्रभुपाद जी को देते थे. और उनकी जो $5,000 की जो डोनेशन थी उससे ही प्रभुपाद जी की भगवद गीता फर्स्ट टाइम जो है प्रिंटिंग हुई अमेरिका में. तो प्रभुपाद जी कभी नहीं भूले. इनफैक्ट May 1, 1977 में जब वे जयानंद प्रभु गुजर गए, तभी श्रील प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा, कहा कि माय डियर जयानंद, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा ये $5,000, क्योंकि उन दिनों में मेरे पास इतने शिष्य नहीं थे, इतना फंड्स नहीं था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी भगवद गीता प्रिंट करने के लिए, और तुम ज़रूर भगवत धाम वापस जाओगे. और प्रभुपाद जी ने सबसे कहा था कि जहाँ भी रथ यात्रा होगी जयानंद का फोटो लगेगा, वो एक प्योर वैष्णव है, और जिस तरह से आप दूसरे भक्तों का अपेयरेंस डे, डिसअपेयरेंस, तिरुभाव, आविर्भाव तिथि मनाते हो, जयानंद प्रभु की भी आपको जो है ज़रूर मनानी है उनकी तिरुभाव तिथि. तो इतने सुंदर जो है जयानंद प्रभु के गुण थे. जहाँ भी कोई भी मंदिर में रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करनी हो तो जयानंद प्रभु बड़े ही उत्साह से, लेकिन जीवन के अंत में उनको कैंसर हो गया था और वे बेड रिडन थे और बहुत दिनों तक आईसीयू में भी थे, लेकिन वहाँ भी प्रचार करते थे. और जब हॉस्पिटल से भी बाहर आए, लॉस एंजलिस मंदिर में थे, तो सबसे कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ मुझे ये डिजीज हुई. तुमको पता है ये रोग मुझे हुआ ना तो मुझे थोड़ी सी क्या बोलते जागृति आ गई कि कभी भी मौत आ सकती है, मैं थोड़ा सा और सीरियस हो गया, बहुत अच्छा हुआ भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया. अब ये कितनी बड़ी बात है, कोई भी कहेगा मैंने इतनी सेवा की, कम से कम ठाकुर जी मुझे एक अच्छी मौत देते, इतनी कष्ट वाली, इतनी पेनफुल मौत क्यों दी. लेकिन वे उसमें भी इतने थैंकफुल थे कि ठाकुर जी कितने दयालु है, ये है बोल के मैं कम से कम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह पा रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा हूँ, ये पेन इतना ज़्यादा मेरे बॉडी में पेन हो रहा है कि मुझे और कोई विचार आ ही नहीं रहे, मैं बिल्कुल कृष्ण को ही याद कर रहा हूँ. तो इतने प्यारे थे जयानंद प्रभु. तो ये अभी जो है, पर एक और बात मैं बता के यहाँ खत्म करूंगी कि ये बात आप सुनेंगे तो आपको काफी प्रोत्साहन मिलेगा. कभी कभी हमें लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा को अपनाया, मेरी सेवा को स्वीकार किया, क्या ठाकुर जी ने एक्नोलेज किया कि मैंने ये सेवा की है. एक्चुअली ठाकुर जी कुछ नहीं भूलते. रिसेंटली मतलब आई थिंक सो 2007 में, या सही से डेट याद नहीं आ रही है, लेकिन चंद्रमौली महाराज की एक शिष्या है जो हॉस्पाइस में काम करती है, जहाँ पे लोग मरने वाले होते हैं मरण टाइम में वहाँ एडमिट करते हैं हॉस्पाइस में. तो लास्ट डेज में अगर उनका कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है तो ये लोग सर्विस करते हैं, एंडिंग तक उनको जो है डेथ तक उनके साथ रहते हैं. अब चंद्रमौली महाराज की ये जो लेडी डिसाइपल है वो ये हॉस्पाइस में काम करती थी. तो उसको लगा कि देखो सब अपना बहुत प्राउड से अपना वो क्राइस्ट का ये लॉकेट लगा के आते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, तो मैं भी क्यों ना तिलक लगाऊँ, मैं भी अपना प्राउड से जो है मैं भी इस्कॉन को बिलोंग करती हूँ, तो वो भी तिलक लगा के जाने लगी. तो वहाँ पे एक लेडी थी उस हॉस्पाइस में, वो बस मरने ही वाली थी, कुछ दिनों की मेहमान थी. तो ये उसके साथ में प्यार से उसकी सेवा कर रही थी, उसको जो है खाना खिलाना सब कुछ करना, और हरे कृष्णा बोलती थी क्योंकि ये तो डिवोटी है. और ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी, मतलब और कोई बचने की कोई चांसेस नहीं थे, और आसपास में भी कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे टेक केयर करने के लिए. तो ये कंटिन्यूसली हरे कृष्णा बोलते रहती थी उनके साथ में. और लास्ट मोमेंट में जिस दिन मतलब एकदम येल्लो हो गई थी, पेल हो गई थी, लगा कि आज तो वो मतलब अब कुछ घंटों की मेहमान है, तब हॉस्पाइस वालों ने उनके बच्चों को फ़ोन किया कि आ जाइए, आज जो है आप उनकी डेथ हो जाएगी. तो जब उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे आई, तब उनके फैमिली ने इनको देख के कहा, तिलक क्या आप हरे कृष्णा है? बोला हाँ मैं हरे कृष्णा हूँ. ओ फिर तो आप मेरे अंकल को जानते होंगे, मेरे अंकल का नाम है जयानंद और वे इस्कॉन के लिए रथ बनाते थे. तो बोला क्या तुम जयानंद के? हाँ तो मेरे अंकल थे और ये हमारी ग्रैंड मदर है, जयानंद की मदर, और हम ग्रैंड चिल्ड्रन है. तो धैन ये इतनी सरप्राइज हो गए कि भगवान की लीला देखिए, जयानंद प्रभु तो मतलब कैंसर से गुजर गए, लेकिन उनकी मदर की भी जो मौत हो वो भगवान का नाम सुनते हुए हो, इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि एक भक्त उस हॉस्पाइस में सेवा कर रही थी और लास्ट मोमेंट में जो है जयानंद प्रभु की मदर को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हुए जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो कृष्ण डजंट फॉरगेट, कृष्ण नहीं भूलते। आप जो भी सेवा, हमें लगता है पता नहीं शायद मेरी सेवा को भगवान ने अपनाया नहीं अपनाया, वो जानते भी है कि नहीं मैंने कितनी मेहनत से ये सेवा की है, लेकिन वो हर एक चीज़ देखते हैं और नोट डाउन करते हैं। ये जो है रथ यात्रा की महिमा है। तो हमने आज चर्चा की कैसे विश्व की सबसे पहले रथ यात्रा हुई, कैसे हमने चर्चा की कि रथ यात्रा मतलब भगवान भाव से अपने भक्तों को, राधा रानी को मिलने वृंदावन जा रहे हैं। हमने चर्चा की इस्कॉन में सबसे पहले बार रथ यात्रा कब हुई 1967 में और कैसे हुई, और हमने मिस्टर रथ यात्रा यानी जयानंद प्रभु के बारे में भी चर्चा की। तो ये रथ यात्रा महोत्सव बहुत जल्दी अब थोड़े दिनों में आने वाला है, तो हमारे मन में भी हमें बहुत सुंदर भावना रखनी चाहिए और बड़े पवित्र मन से जगन्नाथ जी को जो है हमारे हृदय में वेलकम करना चाहिए। और कुछ मंत्र है या क्या कहा जाए तो कुछ श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे तब वे गाते थे, तो आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं और आप उसे गा सकते हैं। अब इतना समय नहीं है कि मैं उसको गा के सुना सकूं, लेकिन आप लोग को नोट डाउन करा सकती हूँ श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 90th चैप्टर के 48 श्लोका जयति जना का जो ये श्लोक है, और मुकुंद माला स्त्रोत्र का श्लोका नंबर 3, और एक विष्णु पुराण से जो श्लोका हम लोग रेगुलरली इस्कॉन में गाते हैं ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः, वो भी आप रथ के सामने गा सकते हैं। और जो फेमस श्लोका हमारा जो है गोपी भरतो पद कमलयो दास दासा अनुदासा, रूप गोस्वामी के द्वारा रचित पद्यावली से जो ये श्लोक है, ये 4 श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाते थे, तो हम भी जो है रथ यात्रा में इसको जो है गा सकते हैं। तो ये जो रथ यात्रा अभी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के दिन ही की जाती है, क्योंकि इसका एक विशेष महिमा है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा चैप्टर में इसके बारे में कहा गया है कि अगर जो कोई रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है। कहते हैं रथाग्रे च वामना दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते। कोई अगर एक बार भगवान को रथ में देख ले तो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, इसके सारे कोटेशन है। स्कंद पुराण 33.59 कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम अगर आपने कितने भी मतलब पाप किए हैं, सारे पाप एक मिनट में धुल जाते हैं अगर आप भगवान को रथ पे देखते हो। ब्रह्म पुराण 63.1 and 2 श्लोक में कहते हैं कि अगर एक बार कोई जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर में देखते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, जितना आपको 10 साल तक जगन्नाथ जी को मेन मंदिर में देखने से भी नहीं मिलता, उतना ज्यादा पुण्य आपको एक बार भगवान को गुंडीचा मंदिर में देखने से मिलता है। पद्म पुराण में कहते हैं अगर एक बार कोई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड कर ले तो वो भगवत धाम चला जाता है, उसे फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे इतने सारे कोटेशंस है कंटिन्यूस क्या होता है। सी, 3 थिंग्स होती है मेनली जगन्नाथ की रथ यात्रा में। एक तो हवा, जो हवा ठाकुर जी के श्री विग्रह को छूती है उसी हवा में आप सांस लेते हो, तो जितनी बार आप उस हवा में सांस ले रहे हो आपके सारे पाप धुलते जा रहे हैं। एक है रथ का जो चक्र घूमता है तब जो धूल उड़ती है आपके शरीर पे उससे आपका मन पवित्र हो जाता है। और एक है ग्लांस, आप ठाकुर जी की तरफ देखते हो और ठाकुर जी आपकी तरफ देखते हैं जब आप रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हो, और जब ठाकुर जी की आंखें आप पे पड़ती है मतलब एकदम जो है आप पवित्र हो जाते हैं। तो रथ यात्रा मतलब जो डस्ट एंड द एयर एंड द फॉर्म, ये 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। तो रथ में अगर कोई पार्टिसिपेट करे या केवल रथ की जो रस्सी है उसको एक बार छू के चले जाए या रथ की जो चक्र है उसको छू ले, या ठीक है कुछ नहीं करे सिर्फ खड़े रह के रथ को देखे जहाँ पे जो बेड़ी है जिसमें भगवान बैठे होते रथ पे, बस देखे उतना भी करे या प्रसाद ले तो भी जो है वो उतर जाते हैं। क्योंकि ये इंद्रद्युम्न महाराज ने जब ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो सबसे पहले तो वे बेड़ी, रत्न बेड़ी के ऊपर में थे जहाँ पे वो जो शिल्पी है विश्वकर्मा उनको तैयार किया था। तो इतने बड़े विग्रह को अभी श्री मंदिर में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, तो तब उन्होंने भी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर भगवान को जो रत्न बेड़ी से उठा के रथ पे रख के फिर खींचते हुए वो रथ को लेके गए और फिर वहाँ भगवान को फिर अंदर में जो है शिफ्ट किया गया। तो ऐसी बहुत सारी रथ यात्रा की अलग अलग कथाएँ हैं, बट भविष्य पुराण या भविष्योत्तर पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, सारे पुराणों के अनुसार अगर कोई रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करता है तो उसे पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हम लोग का अहो भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज ये सौभाग्य है कि हर एक इस्कॉन मंदिर में छोटी बड़े रूप में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। मैंने देखा मिडिल ईस्ट में भी, जहाँ पे तो मतलब चाइना में, पाकिस्तान में भी कितनी सुंदर तरीके से, मिडिल ईस्ट में उनको बाहर अलाउड नहीं है तो एक छोटा सा हॉल लेके या ऑडिटोरियम लेके बस वहीं कर लेते हैं वो लोग रथ यात्रा। और अभी कोविड चलते हमारे गुरु महाराज जो है मायापुर में पेंट हाउस में रहते हैं ऊपर में लोटस बिल्डिंग में, तो वहाँ उन्होंने अपना छोटा सा रथ बना लिया है और उनके आंगन में ही वे रथ यात्रा कर लेते हैं। तो मतलब अब तो टेक्नोलॉजी भी है, आप वर्चुअल भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, या अपने घर में छोटा सा रथ बना सकते हो, आपके अपार्टमेंट में कर सकते हो, कुछ नहीं है तो अपने घर में आप जो है जगन्नाथ जी को घुमा सकते हो, और वो भी नहीं हो सकता है तो बस अपने हृदय में जगन्नाथ जी को जो है आप जो है घुमा लो हृदय के अंदर में, और सो आपका हृदय भी परिष्कार जो है आपका क्लीन कर लेंगे जगन्नाथ जी। तो बस ये सब कहते हुए मैं यही ख़त्म करूँगी, काफ़ी देर हो चुकी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा लगे सब कृष्णा 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 लगे सब कृष्णा 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 लगे सब कृष्णा कृष्णा।